हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका ने आखिरकार हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा ताने मत मारो, आती हूँ। दूसरी तरफ से वो आदमी खुश होते हुए बोला, ओके फाइनली, चल अब जल्दी कर, आखिर कितनी देर बैठा रहूंगा मैं यहाँ पर तेरे इंतजार में। उसकी बात सुनकर शिविका ने असहायता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बस आती हूँ, इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर शिविका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और कुर्सी के किनारे रखा हुआ अपना ब्लेजर उठाकर पहना और केबिन से बाहर निकल गई। ऑफिस में किसी को भी उसके उस वक्त अपने केबिन में होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए सब एकदम लापरवाही से इधर उधर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिविका को केबिन से बाहर निकलते और दरवाजे की ओर जाते देखा, सब एकदम सीधे होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और अपना काम करने लगे। लेकिन शिविका फिलहाल कहीं और जाने के लिए अपने केबिन से बाहर निकली थी, इसलिए उसने वहां बैठे हुए किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और वहां से सीधा बाहर निकल गई। करण भी आ गया था, लेकिन उसने करण को भी नहीं देखा, वो अभी अभी आया था। बाकी सबकी तरफ से भी ऐसा लगा जैसे किसी का भी अभी तक ऑफिस नहीं आया हो, इसलिए वो सीधा केबिन में नहीं गया, लेकिन वो ऑफिस में ही थी। ये बात उसके बाहर जाते ही सबको, करण को भी पता चल गई। शिविका के इस तरह वहां से निकलते ही ऑफिस में गुसफुसी शुरू हो गई। रजनी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ओह गॉड, शिविका मैम ऑफिस में ही थीं, मुझे तो पता ही नहीं था। निधि ने भी उसकी बात पर कहा, मुझे भी कहाँ पता था, और कब आई हैं, मैंने तो इन्हें आते भी नहीं देखा। अंकिता ने पूछा, हम सबसे पहले ही आ गई थीं क्या? स्नेहा ने कहा, और हम सब आपस में बातों में लगी थीं, मैंने देखा तो नहीं। पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल देखा होगा और नोटिस भी किया होगा, आंधी तो है नहीं वो। वो सारी लड़कियां वहां पर खड़ी होकर आपस में बात कर रही थीं। उन सबको एक साथ देखकर करण भी वहां आ गया। उसने उनकी बात सुनकर उन्हें लगभग डांटते हुए कहा, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, हम सबकी बॉस हैं वो, और तुम सब अपना काम ठीक से करतीं तो इस तरह से डरना नहीं पड़ता। स्नेहा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ ठीक से काम करें, या फिर अगर हम तुम्हारी तरह हैंडसम और अट्रैक्टिव ऑपोजिट जेंडर के होते तो शायद बच जाते। करण ने उसकी बात पर तुरंत पूछा, व्हाट डू यू मीन स्नेहा? दिव्या, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, करण के पूछने पर तुरंत जवाब देते हुए बोली, स्नेहा पर क्या चला रहा है करण, हम सबको यही लगता है कि तुम काम के अलावा कुछ और भी करने की कोशिश में लगे रहते हो। करण उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और हैरानी से पूछा, मतलब क्या है तुम्हारी इन बातों का और तुम सब ये? स्नेहा ने फिर से कहा, ओ स्टॉप इट करण, तुम्हें क्या लगता है हम सब पागल हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि तुम इतने कम समय में इतनी जल्दी मैम के फेवरेट कैसे बन गए हो। करण एकदम अनजान बनते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम सब किस बारे में बात कर रही हो, और तुम्हें जो भी लगता है वो सब गलत है। सच तो ये है कि मैं अपना सारा काम ठीक से करता हूँ, इसीलिए मैम मुझसे खुश रहती हैं। बाकी तो दुनिया कुछ भी बोलती है, तुम सब की तरह जिसको जो समझना है समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार निधि ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो फिर प्रूफ करो कि तुम मैम को सिर्फ अपनी बॉस ही मानते हो और कुछ नहीं। करण ने एकदम एटीट्यूड में आते हुए कहा, मुझे किसी को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली तुम सबको। स्नेहा हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, कैसे प्रूफ करोगे, झूठ कोई भी प्रूफ नहीं कर पाता, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर निधि ये तुम्हें पसंद करती है, लेट्स स्टार्ट डेटिंग हर। स्नेहा की ये बात सुनकर निधि की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, वो तो आखिर कब से यही चाहती थी और इसीलिए करण के आगे पीछे भी लगी रहती थी। वैसे सभी लड़कियां कहीं ना कहीं मन ही मन करण को पसंद करती थीं, लेकिन निधि सबसे आगे थी, इसीलिए स्नेहा ने निधि का नाम लिया। करण तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं मैं निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और इस तरह से सिर्फ तुम लोगों के कहने पर तो मैं किसी को भी डेट नहीं करने वाला, और वैसे भी ये ऑफिस है, कोई डेटिंग ऐप नहीं। दिव्या ने भी उन सबकी तरफदारी करते हुए कहा, प्लीज रहने तो करण, चाहे जितने बहाने बना लो, तुम हम सबको पता है कि सच क्या है, तुम्हारी नज़र तो कहीं और ही है, और वैसे भी निधि में क्या कमी है, देखो हम सब में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और अपने काम में भी अच्छी है, और क्या चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें पसंद भी करती है पहले दिन से। करण को समझ नहीं आ रहा था कि उन सब लड़कियों को अचानक क्या हो गया है जो अब वो सब मिलकर इस तरह उस पर हमला बोल रही हैं, और वो भी उसकी और शिविका के रिश्ते को लेकर। करण इस बात को लेकर पक्का था कि उसके और शिविका के रिश्ते के बारे में ऑफिस में अब तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन दोनों ने ही इस बात को अच्छी तरह से सीक्रेट रखा हुआ है। इसलिए वो समझ रहा था कि सारी बातें वो लड़कियां सिर्फ अपने अंदाजे से कह रही हैं। करण ने फिर से उसी एटीट्यूड में बोला, मैंने उससे नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करे, और निधि प्लीज बंद करो तुम ये सब, क्या बोल रखा है तुमने इन सबको मेरे बारे में। निधि आगे आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, यस आई रियली लाइक यू करण, मुझे पता था तुम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसीलिए मैं अब तक चुप थी, लेकिन आज बता ही दो क्या तुम सच में मैम को पसंद करते हो। करण ने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ से वापस ले लिया और इधर उधर देखते हुए बात इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी और तुम सब अपना काम करो जाकर, और मुझे भी मेरा काम करने दो। दिव्या ने निधि को समझाते हुए कहा, चलो छोड़ो, रहने दो निधि, तुम्हें कोई और मिल जाएगा इससे बेहतर, कम से कम वो जो गोल्ड डिगर तो नहीं होगा इसकी तरह, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉस के पीछे ये सिर्फ उनके पैसे के लिए है। अंकिता ने बाकी लड़कियों को समझाते हुए कहा, देखो तुम सब अब कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, और वैसे भी हम सबको इस बात का सिर्फ शक है, कोई भी कन्फर्म नहीं है इस बात को लेकर। अंकिता के बीच में बोलने पर स्नेहा गुस्से में कहा, अब तुम क्यों एकदम से इसकी तरफदारी करने लगी। तभी उन सबको पीछे से जतिन की आवाज आई, क्या हो रहा है वहाँ पर, कब सब इस तरह से एक जगह पर क्यों इकट्ठे हैं। अंकिता ने जतिन को भी सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं सर, वो तो बस ऐसे ही, हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे थे काम के बारे में। अंकिता की बात सुनने के बाद जतिन ने आगे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि अंकिता बहुत समझदार और सीनियर भी थी, इसलिए जतिन उसकी बातों पर भरोसा करता था। अंकिता की बात पर सिर हिलाते हुए जतिन जब दूसरी तरफ मुड़ा तो उसे करण अपने सामने नजर झुकाकर खड़ा दिखा। क्या हुआ करण, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। करण ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नो सर आई एम परफेक्टली फाइन। इतना बोलकर करण वहां से वापस अपने डेस्क की तरफ चला गया, लेकिन उसका दिमाग उन सब बातों में ही लगा हुआ था जो वहां पर काम करने वाले सारे लोग बोल रहे थे, जिनमें से ज्यादातर लड़कियां थीं। लेकिन लड़के भी करण से मन ही मन जलते थे, इसलिए वो सब भी इन बातों में लड़कियों को ही सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ करण को समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस में सब लोग दोनों को लेकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, और शिविका अचानक कहाँ चली गई। उसे इस बारे में शिविका से बात करनी थी जो बहुत जरूरी थी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और आसपास देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। उसने शिविका का नंबर डायल किया।
शिविका अपनी कार में बैठी हुई एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर बढ़ रही थी, तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर करण का नाम देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। कॉल रिसीव करते ही शिविका ने पूछा, हाँ क्या हुआ करण, तुम्हें छुट्टी चाहिए क्या आज। उसके इस तरह सीधे छुट्टी के बारे में पूछने पर करण थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए बोला, छुट्टी, लेकिन किस चीज की, मैं तो पहले ही यहाँ ऑफिस आ चुका हूँ, देखा नहीं था क्या तुमने निकलते वक्त। शिविका ने उसकी बात पर कहा, अच्छा ऑफिस आ गए हो, तो फिर क्या कोई इम्पोर्टेंट काम है। सॉरी मैं थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया, और तुम्हारा कॉल आया तो मुझे लगा शायद छुट्टी के लिए पूछ रहे होगे। करण ने अपनी तरफ से बात साफ करते हुए बताया, नहीं मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, और मुझे तुमसे मिलना है, एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जरूरी बात सुनकर शिविका को भी वो बात याद आ गई जो उसे करण से करनी थी। उस बारे में सोचते हुए उसने भी एकदम सीरियस होकर कहा, जरूरी बात तो मुझे भी करनी थी, लेकिन तुम ऑफिस नहीं आए और मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन अभी नहीं मिल सकती, सॉरी अभी मैं एक जरूरी काम से बाहर हूँ। करण ने फिर सवाल किया, हाँ वो तो मैंने देखा ही, मैं इतनी जल्दबाजी में ऑफिस से बाहर जाते हुए समझ गया था कि जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, लेकिन वापस कब आओगे ये तो बता दो, क्योंकि बात बहुत जरूरी है। शिविका ने जल्दबाजी में बताया, हाँ वापस ऑफिस, पता नहीं वैसे कोई जरूरी काम हो तो मेल कर देना, नहीं तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं आ पाऊंगी, और हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। क्योंकि वो खिड़की से बाहर देख रही थी और वो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच गई थी, वहां से थोड़ी दूर पार्किंग के पास ही ड्राइवर ने कार रोक दी। इतना बोलकर शिविका ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल फोन वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। करण ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे लेकिन मेरी बात सुनो शिविका। करण आगे कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसे पता था कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और उसके कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, उसकी बात शिविका तक नहीं पहुंचने वाली। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मोबाइल फोन अपने माथे से लगाते हुए करण ने अपने मन में कहा, ये कौन सा जरूरी काम है? ये आज अचानक क्लाइंट मीटिंग और बाकी सारी जगह तो मेरे साथ ही जाती है, तो फिर कहाँ चली गई? और इतनी जल्दबाजी में इसने नोटिस भी नहीं किया कि मैं ऑफिस आ चुका हूँ। करण सिर पकड़कर वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, और पता नहीं यहाँ ऑफिस में सब लोगों को ये सब कुछ सच में पता चल गया है या फिर ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और क्या करूँ मैं इस बारे में? हाँ, शिविका से बात तो करनी ही होगी, कम से कम उसे पता चलना चाहिए। क्रमशः